ओम शांति। जैसे कल बता रहे थे सचिन भाई जी, 10-10-10 14 साल की साधना उनकी पूरी हुई यहाँ। वैसे तो 2003 में सचिन भाई आए थे, तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है उनके आसपास रहने का, या जब भी हम इतना मिलते थे, तो 2003 में सचिन भाई के यहाँ पदार्पण हुआ। तो उसमें तो यहाँ अव्यक्त मूल्यां पड़ी जाती थी। तो हमको जिस दिन सचिन भाई इधर आए, तो उसके पिछले दिन हमको फोन आया था मंगेश भाई का कि एक भाई ऊपर आ रहा है, थोड़ा आप ध्यान रखना उनका, तो बहुत लगन वाले हैं। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो मॉर्निंग की क्लास हम वहाँ बैठते थे, यहाँ श्रीमद भाई मुरली पढ़ते थे और यहाँ डॉक्टर मुरली बैठते थे, और यहाँ 15-20 होते थे उस समय। तो सचिन भाई यहाँ जहाँ हम बैठे, जहाँ चंद्रशेखर भाई बैठे अभी, यहाँ आकर बैठे थे। तो आते हो जो बैठे थे, जहाँ शुरुआत की बात कर रहा हूँ, तो वही आंखें नीचे, जो कहते हैं डाउन कास्ट आए, जब मना आंखें नीचे करके, जो शुरू से हमने देखा उनको, तो नहीं शर्माते, शर्माने के लक्षण नहीं थे वो, क्योंकि जो हमने चेहरा देखा था उस समय, जैसे मंगेश भाई ने कहा था, तो आंखें नीचे करके बैठे रहे। तो हम बीच बीच में उनको देखते रहे, क्योंकि उनको मंगेश भाई ने कहा था। तो फिर जैसे थोड़ी देर वक्त के बाद उन्होंने आंखें जो ऊपर की ना, तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वैराग्य का अंतिम रूप क्या होता है वो आंखों में, उस समय जल का था। हमको यही पहला संकल्प आया था कि अति वैरागी आत्मा ये ऊपर टोपी पहनी थी सिर के ऊपर, शायद बाल वगैरह नहीं थे उस समय, है ना माना बाल थे लेकिन कटे हुए थे, तो टोपी पहनी थी, वाइट कलर की टोपी, दिसंबर का महीना होगा। तो वैराग्य की जो क्या अवस्था होती है वो हमने एक्सपीरियंस किया उस समय। तो उन्होंने मुख से कुछ नहीं बोला, लेकिन वो हमको एक शक्तिशाली वाइब्रेशन महसूस हुआ कि वैराग्य कैसा होना चाहिए, इस आत्मा जैसा होना चाहिए। तो उसके बाद तो फिर धीरे धीरे इनका आवागमन होता रहा। फिर यहाँ से वापस चले गए थे मधुबन से, फिर कुछ दिनों के बाद आए। तो हमारी पहचान तो इतनी थी नहीं, लेकिन फिर इनकी सेवा नीचे थी शांतिवन में, फिर अपना ट्रॉमा सेंटर तो नहीं था उस समय इतना, लेकिन जो हॉस्पिटल था या एवर हेल्दी हॉस्पिटल की तरफ से गांव-गांव में सेवाएं होती थी, मेडिकल जो चल दवाखाना होता है उसके माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से चलता फिरता दवाखाना, तो उसमें से सचिन भाई जाते थे। तो उन दिनों में हम भी यहाँ डेली अप डाउन करते थे साइट सीन के लिए, और उसमें शांतिवन में भी एक ही भाई था, हम ऊपर से जाते थे शांतिवन साइट सीन में, क्योंकि बहुत भाई बहने आते थे, तो सबको संभालना एक के बस की बात नहीं होती थी। अभी तो 5-6 भाई हैं, तो उसमें हम यहाँ डेली नीचे जाते थे शाम को, और फिर सवेरे साइट सीन करा के फिर ऊपर आ जाते थे। तो हम शाम को नीचे जाते, कई बार लेट हो जाते थे हम नीचे साइट सीन कराते, दोपहर को भी हो जाता था। तो सचिन भाई दोपहर को वापस जब लौटते थे दवाखाना अपना ये गांव-गांव से सेवा करके, तो देखते थे हम मंगेश भाई के कमरे में सोते थे वो। तो हम भी उस समय तो हमने एक्स्ट्रा तो वहाँ कोई ऐसी चारपाई हमने ली नहीं थी, हम भी कभी कभी वहाँ उनके वहाँ दो खटिया थी, प्रेम भाई गुलाटी जी, ओम प्रकाश गुलाटी, तो वहाँ नहीं सोते थे, उनका रेजिडेंस था संगम भवन, वो वहाँ रहते थे। तो उनकी खटिया भी खाली होती थी, मंगेश भाई अपने डिपार्टमेंट में रहते थे, तो सचिन भाई उधर सोते थे। तो कई बार हम भी जाते थे सोने, शायद सचिन भाई ने देखा या नहीं देखा उनके पता, लेकिन जैसे हम कमरे रहते थे, सचिन भाई बिना पंखे के, पंखा था लेकिन चलाते नहीं थे, इतना पसीना पड़ा, मैं सोचा कैसा आदमी है ये, बिना पंखे के सोया, पंखा भी है और इतनी गर्मी के बीच भी कैसे सोए। तो मैं सोचा कैसा त्याग है इनका, ये कैसे अपने शरीर को डाल के रखा हुआ है। तो कई दफ़ा हम भी बांस होते थे, तो ऐसे बीच में फिर थोड़ा थोड़ा मिलना होता रहता था। उसके बाद फिर सचिन भाई ऊपर आते थे, तो ऑफिस में कई बार मिलना होता था, तो धीरे धीरे फिर उन्होंने हमारा ईमेल आईडी लिया, हमने उनका ईमेल आईडी लिया, फिर आपस में ज्ञान की चिटचैट चलती रहती थी। तो अब हमको तो इतना पता नहीं कि ज्ञान की पराकाष्ठा, प्रकाट पंडित है ये, प्रकांड विद्वान है ज्ञान के, हमको तो इतना आइडिया था नहीं है, हम तो अपनी बुद्धि के अनुसार, क्षमता के अनुसार ज्ञान की लेन देन करते रहते थे। लेकिन हमने देखा है जी, हाँ, जिज्ञासा वृत्ति उनकी बहुत बहुत जो प्यास थी एकदम पुरुषार्थ के प्रति, जो आज भी अब देखने को मिलती है। तो हमको उन्होंने ईमेल आईडी दिया कि जो भी आप पॉइंट वगैरह बनाते हैं तो आप हमको भेज दिया करो। तो सारे पॉइंट जैसे हम बनाते थे सारे इनको पोस्ट कर देते थे। फिर उसके बाद तो सचिन भाई दोबारा से मीरज में चले गए पढ़ाई पढ़ने के लिए। तो जब वापस लौटे तो उसके बाद मैं समझता हूँ 2 साल तक हमारी इतनी बस खाली ओम शांति होती थी, क्योंकि 2 साल तक मैं समझता हूँ मौन ही रहे होंगे वो, तो बस हेडफोन डाले हुए हैं कान में उन सुन रहे हैं और किसी की तरफ देखना नहीं, कोई लेना नहीं किसी से, जैसे संसार में हमारे आगे कोई है ही नहीं, ऐसे सीधा एक तरफ निकल जाते थे सीधा ही। तो हम भी उसमें इंटरफेयर नहीं करते थे, क्योंकि कोई अपना अपना पुरुषार्थ कर रहा है तो हम भी उसी तरीके से रहते थे। तो यहाँ मुरली पढ़ते थे, फिर बीच में एक दिन उनको क्या नाम आशीष भाई ने बताया कि ग्लोबल हॉस्पिटल में सचिन भाई से छोटा ग्रुप चलाते हैं तो आप उनको बुलाइएगा। हमने कहा ठीक है। तो फिर एक दिन सचिन भाई आए, इधर बैठे थे, तो हम तो मुरली पढ़ते थे और हम तो एकदम स्पीड रीडिंग में बैठे थे, स्पीड रीडिंग मेथड से मुरली पढ़ते थे फटाफट फटाफट, बीच में थोड़ा बहुत पूछते थे सबको, ज़्यादा नहीं पूछते थे। लेकिन वो जो वाइब्रेशन थे अमृत वेले मुरली पढ़ने के, वो जो एक्सपीरियंस होता था अमृत वेले से भी शक्तिशाली होता था। जैसे आज का है बाबा के महाबा के मीठे बच्चे, तुम्हें यो याद कैसे करना है, बाप की याद के साथ साथ क्या करना है, आज का मीठे बच्चे क्या है, हाँ ज्ञान का सिमरन भी करते रहना है तो अपार खुशी रहेगी। तो वो जो अमृत वेले के बाद की क्लास होती थी यहाँ की अभी भी, तो वो बहुत शक्तिशाली पावरफुल एक्सपीरियंस होता था, अमृत वेले से भी ज्यादा पावरफुल। तो वो आदत बन गई थी, अमृत वेले जैसे पूरा हुआ सब लोग यहाँ मुरली आके पढ़ते थे। तो फिर से एक दिन सचिन भाई भी आ गए इधर, तो हमने कहा कि आप मुरली पढ़ेंगे, तो उन्होंने हाँ कहा ठीक है। तो हमने देखा जो उनका मुरली पढ़ने का तरीका था, सुनाने का तरीका था, हमने देखा था इसमें जो हमारी छोटी छोटी कमी कमजोरियाँ हैं उनको दूर करने के लिए बाबा ने हमको एक यंत्र भेजा, जैसे हमको ये संकल्प आया उसमें कि इसका इनका बहुतों को फायदा हो सकता है। और बचपन से हमारा ऐसा रहा कि किसी कोई आगे भी जा रहा है तो हमको कोई ऐसे नहीं होता कि आगे क्यों जा रहा है, हमारी ये मेंटेलिटी रहती थी कि हमको किसी ना किसी तरीके से हम कैसे आगे बढ़े दूसरों से सीखें। तो फिर उन्होंने ऐसे पढ़ के इधर सुनाया, तो जो उनका पूछने का तरीका था कि इस पॉइंट पर चिंतन कैसे करना है, मनन कैसे करना है, तो हमको वो बहुत अच्छी लगी। फिर धीरे धीरे बीच में कुछ दिनों तक फिर गायब हो गए, फिर वो माता जी पीछे पढ़ते रहे उनके, आओ आओ आओ, तो ऐसे चलते चलते फिर धीरे धीरे उन्होंने चालू किया। तो फिर तो बहुत डिस्कशन, जो स्टार्टिंग की क्लासें थी बहुत पावरफुल क्लासेज हैं, बताया ना बीच में माइक वाइक तो उस समय इतना बार था ही नहीं, वीडियो, कल भी हम क्लास पुरानी क्लास सुन रहे थे एक, तो जो पहले वाली क्लास है उनमें एक आग होती थी, आग मन अंदर में एक दिल हिल जाता था कि ये हमको करना है प्रैक्टिकल में। तो लंबे समय तक डिस्कशन चलती रहती थी, रात को 2-2 घंटे बैठे रहते थे हम सवेरे रात, जो मॉर्निंग क्लास चलती थी उसके ऊपर डिस्कशन, संडे क्लास के ऊपर डिस्कशन, फिर विशेष टॉपिक प्योरिटी के ऊपर डिस्कशन, लंबे लंबे फिर सीरीज चालू होगी, मनसा सेवा, कुमार, आलवेला, पवन आलस्य, जो भी स्पार की किताबें थी वो सब धीरे धीरे खरीद खरीद के कई सारी सीरीज चलती चलती ऐसे कारवा आगे बढ़ता गया। फिर तो धीरे धीरे, फिर पहले सचिन भाई क्लास कराने के लिए इतना जल्दी तैयार नहीं होते थे वो, हम क्योंकि उनको मौन का बहुत गहरा आशा था, उनको माना इनको था नहीं इधर ही है इधर ही है अभी तो उनको इनको बहुत गहरा असर था मौन का, तो उसमें हम फील करते थे कि बाचा में आना उनके लिए बहुत मुश्किल होता था। तो ऐसे हम बीच बीच में बार बार उनको क्रोधित रहते थे अंदर से भी कुछ आप औरों को भी सुनाओ। तो फिर धीरे धीरे इन्होंने फिर क्लासेस कराना शुरू किया, फिर तो हम आज सबके सामने हैं। तो ऐसी आत्माओं के लिए हम सबके मन में अगाध प्रेम श्रद्धा के बाबा के कार्य को कैसे आगे बढ़ाना है, इतना बिजी रहते हुए भी हॉस्पिटल में हम कभी जाते थे तो देखा पेशेंट को चेक करते बीच में अगर 2 मिनट भी उनको मिल जाते थे तो पास में कागज और चिट्ठी रखा होता था पेंसिल, उसमें देख हम पूछते थे आप इतने समय में क्या करते, तो पॉइंट लिखते थे चिंतन करने के लिए। फिर पेशेंट चेक करके जाता था, फिर टाइम मिला फिर लिखते थे। तो हमने देखा एक एक सेकेंड कितना सफल कर रहे हैं उसको, जैसे काली बताया कि 14 साल के इतिहास में देखा तो उनको यही संकल्प है कि मैंने टाइम कितना वेस्ट कर दिया, अब इतना करने के बाद उनको ये संकल्प आ रहा तो हमारा क्या हाल होना चाहिए आजकल तो पानी भी नहीं मिलता है तो हमारा पुरुषार्थ के प्रति कितना प्यार होना चाहिए, इतना करने के बावजूद हमारे में कितनी कमी कमजोरियां हैं, उनसे छुड़ाने के लिए हम सबको वो पुरुषार्थ प्रयास करते रहते हैं। और सूक्ष्म रूप से हमने देखा उनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम संकल्प करने से पहले उनके पास पहुंच जाती है। हम बाकिंग जाते थे सचिन भाई नादरा पॉइंट घूमते रहते थे, रास्ते में मिलते रहते थे, तो हम कई बार संडे होता था उनको मैसेज करते थे क्लास कराने के लिए, अभी हम मैसेज टाइप ही कर रहे हैं कि आप रात्रि क्लास कराना, और उससे पहले आता था ठीक है ओके, मैसेज सेंड नहीं किया अभी, और पहले से आता था ओके। तो हमने कहा बहुत खतरा है ये, तो हमारे संकल्पों भी रीड कर रहे हैं तो सचमुच वो तो हम भी अभी भी फील करते हैं कि जो हम कर रहे हैं जो उनके सामने नहीं है वो उनको पहले पता चल जाता था। और ये सारे साधना का बल है, वो अष्ट सिद्धियां जो हैं वो प्रैक्टिकल में हम बच्चों को नहीं होंगे तो किसकी होंगी। तो वो उन्होंने साधना भक्ति मार्ग से आरंभ जो की हुई है उसकी प्रैक्टिकल में हम सबको अभी उसका फायदा हो रहा है, अनुभव हो रहा है। तो इस ऐसी आत्मा के प्रति हम सबका जो है दिल से आभार है, अभिनंदन है। तो उसी उपलक्ष्य में हमारे आप दीपाली बहन मधुबन की तरफ से एक फ्रूट केक लाए हैं जो बर्थडे के रूप में 14 साल पूरे हुए। अभी अगली साधना उनकी क्या चलेगी, कौन सा तूफान आएगा आगे वो पता चलेगा अभी। ओम शांति। आइए।
ओम शांति। सुशील भाई ने इतनी बड़ी बड़ी तारीफ की। एक्चुअली दूसरों की तारीफ या प्रशंसा वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं उसका स्वरूप है। जब हमारे मन में ही उतनी निर्मलता है तो ही हमें दूसरों के गुण दिखाई दे सकते हैं। यदि हमारे मन में अहंकार का पर्दा है तो हमें दूसरों का कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो जैसे अभी वो 2003 की बातें कर रहे थे, हमको भी याद आ रहा है जब हम एकदम नए नए आए थे तो हमें तो यहाँ का कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। हम सीधा आ गए थे, सीधा बाबा मिलन 30 नवंबर 2003 घर गए और घर से वापस आ गए 15 दिसंबर 2003 हॉस्पिटल ज्वाइन किया। और जब आ रहे थे ऊपर, एक भाई हमारे साथ थे, नागपुर के एक समर्पित भाई है प्रेम भाई, तो वो पूछने लगे तुम कहाँ जा रहे हो। तो हमने कहा ऊपर ग्लोबल में। तो हमारी उम्र तब 21-22 साल ऐसी कुछ थी। तो उन्होंने कहा कहाँ रहोगे। हमने सोचा हमने अभी पूछा ही नहीं किसी से रहना कहाँ है। पर सोचा था जब फर्स्ट टाइम जब बाबा मिलन किया था फर्स्ट एंट्री, तो जाते जाते वो शंकर मठ दिखा था, हमने सोचा वहां रह लेंगे, अगर ये लोगों ने कुछ रहने का दिया नहीं तो उस मठ में रहेंगे जरूर। तो वो भाई ने पूछा अच्छा तो तुम्हारा सामान किधर है। तो सामान तो हमारे पास था ही नहीं, बस एक पॉलिथीन थी और जिसने कुर्ता पैजामा दिया था वो शांतिवन के सामने से। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ये है बस। तो फिर तो तुम वहां क्या करोगे एज अ, मैंने कहा डॉक्टर। तो उन्होंने कहा अच्छा तो तुम्हारे जूते वगैरह नहीं है। मैंने कहा चप्पल है बस। और चप्पल भी टूटी हुई। तो फिर यहाँ हम आए थे ग्लोबल में, तो डॉक्टर प्रताप से मिले ज्वाइनिंग के लिए। तो उन्होंने कहा कि तुम ये नहीं चलेगा, ये कुर्ता पैजामा नहीं चलेगा इधर, तुमको शर्ट पैंट पहनना पड़ेगा। तो हमने कहा वो तो हमारे पास है नहीं। तो वो किचन के घनश्याम भाई थे, उसको बुलाया, एक डॉक्टर आया है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। पहले उसको थोड़े कपड़े दिलाओ। तो फिर कपड़े दिलाए, वो घनश्याम भाई हमको लेके गए मार्केट। तो फिर हमने ज्वाइन कर लिया। फिर हमारा पहला दिन था तो हमको ये नहीं पता था कि ये मुरली वगैरह क्या है। तो हमारे पास डॉक्टर मुरली थे, तो हमने उन डॉक्टर मुरली से पूछा कि ये मुरली इधर होती है क्या। तो उन्होंने कहा अरे ये हेडक्वार्टर्स है, यहीं से तो सब जगह जाती है। तब हमको पता चला अच्छा यहाँ से है। तो हमने पूछा आप कितने बजे जाते हो। तो उन्होंने कहा 3 बजे जाता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा हम भी आएंगे। तो ज्ञान का दूसरा दिन ज्ञान में आने का, तो हम भी आ गए। तो आए और फिर सोफा पे बैठ गए ओम शांति भवन में, पर देखा कुछ लोग सामने बैठे हैं, डॉक्टर श्रीमंत, ये सुशील भाई और वो मुन्ना भाई, तो ये लोग सामने बैठे थे। हमने कहा उनके बाजू में जाके बैठते हैं। तो उनके बाजू में जाके बैठ गए और फिर सीधा दादी प्रकाशमणि आई और मुरली चालू हो गई। मीठे बच्चे, अब तक तुमने जो पढ़ा है वो भूल जाओ। तो हमको एकदम डर लगा, ये पहले तो है कौन। और फिर हमने पीछे देखा कि किसको कह रहे हैं। तो हमको लगा जैसे मुझे कह रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ के आए थे बहुत सारी चीजें। तो फिर मुरली भी पूरी हो गई और फर्स्ट डे था हॉस्पिटल का, इसके पहले भी सुनाया है, रामनाथ भाई एडमिट हो गए P1 वार्ड में। तो उनको देखने फिर दादी जानकी आ गई, तो हम वहीं खड़े थे, हमारा फर्स्ट डे था। तो दादी जानकी ने कहा ये कौन है? प्रताप सर ने कहा ये हमारे नए डॉक्टर आए हैं। दादी ने ऐसे देखा फिर ऐसे हाथ रख दिया, हमको पता नहीं था ये कौन है। तो दादी ने कहा अच्छा ये है राज ऋषि। फिर हम हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लिए, और फिर और किसी से पूछा आप लोग कितने बजे जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो 3 बजे जाते हैं, किसी ने कहा 2:30 बजे जाते हैं, किसी ने कहा हम 2 बजे जाते हैं, किसी ने कहा 1:30 बजे जाते हैं। हमने कहा हम भी जाएंगे, करना क्या है पता नहीं। और फिर 1:30 बजे पीछे से पैदल, और फिर वो कुटिया कुटिया का दरवाजा खोलते थे। संजय भाई थे, तो संजय भाई दरवाजा खोलते थे हमारे लिए, और वो इतना गहरा अनुभव होता था। हम 1.5 साल इधर रहे थे, पर कभी किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती थी। और इतना मतलब बहुत नशा रहता था, बहुत ज्यादा नशा। और सुशील भाई मिलते थे, और भी बाकी लोग थे उस समय, वो काली दूल से मिलते थे, तो हमको बहुत खुशी होती थी इन सबको देखकर। पर हमको ऐसा लगता था ये लोग बहुत बहुत ऊंचे लोग हैं, तो हम बात ना करने का कारण ये था कि हमको लगता था हम बहुत कैसे बात करें इनसे। मतलब ये लोग इतने समय से हैं यहाँ पर, और इतना हमको ये था खुशी और ये नशा मधुबन का, पर बताने से डरते थे। एक भाई किसी ने पूछा भी था तुम कब से ज्ञान में हो, तो हमने कहा था युक्ति युक्त बोलना पड़ता है इधर। तो वैसे तो एक ही दिन हुआ था ज्ञान का, तो हमने कह दिया था 1 महीना, तो उसने कहा 1 महीने में मधुबन आ गए, तो हमको एकदम ही डर लग गया ये कहीं निकालना थे। तो फिर हमने उसको बढ़ा दिया, 6 महीना कर दिया। फिर किसी ने पूछा तुम कब से हो इधर, तो हमने कहा 6 महीने से, तो बोले 6 महीने में मधुबन भी पहुंच गए, तो बाप रे हमको तो और डर लगा। तो हमने फिर अगली बार 1 साल कर दिया। तो कब से हो, तो हमने कहा 1 साल से। अच्छा अच्छा 1 साल से, कौन सा सेंटर? वो भी एक प्रश्न था, कोई सेंटर था ही नहीं, सीधा यहीं पहुंच गए थे। तो वो 1.5 साल जो था वो बहुत बहुत मतलब इतना भयंकर नशा था कि क्या करूं और क्या नहीं, नींद ही नहीं थी। 1 बजे उठ जाते थे, और फिर इंतजार करते थे कि 1:30 बजे ये लोग साथ में जाए। और वो बाबा की कुटिया से ऐसी लाइट आती थी जबरदस्त, कि क्या बताए किसको और कैसे बताए, और कैसे बताओ किसको कि मैं अभी अभी आया हूं, कि लोगों को लगता था हम बहुत पुराने हैं, पर ये सारा ज्ञान हमारे लिए नया था। और जब हम आए थे तो इतनी मेरे उनको ये थी इच्छा की है कि अव्यक्त मूल्यों को अध्ययन करें, तो हमारे पास पैसे नहीं थे पर, तो हम लाइब्रेरी जाते थे। तो लाइब्रेरी में हमने फिर वो चीनू भाई थे, उनसे दोस्ती कर ली, पर हमको ऐसी बुक चाहिए थी जो हमारी हो, क्योंकि उसमें अंडरलाइन किए तो अगली बार लोगों ने डरा दिया तुमने लाइब्रेरी की किताब में अंडरलाइन क्यों की। तो फिर हमको लगा हम वेट करने लगे कि कब सैलरी आएगी। तो हमको फिर फर्स्ट सैलरी मिली 6,000-5,000 ऐसे कुछ थी उस समय। तो वो जो पैसे मिले हम सीधा लिटरेचर डिपार्टमेंट में गए, और 1969 से 2003 तक की जो अव्यक्त वाणियां थी वो सारी की सारी खरीद ली, और फिर वो सारी ली। सबसे बड़ा दुख ये था कि हमको बहुत लेट हो गया है, क्योंकि ये सब लोग बहुत आगे चले गए, और हमारी मतलब जो परिचय मिला या भगवान मिले बहुत लेट मिले। तो हमको याद है हम वहां ट्रांसपोर्ट में खड़े थे, वो पूरी अव्यक्त मूल्यों का सेट हमारे पास था, और हमने ये सोचा था अब इस भगवान को छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो बस आई, बस में बैठ के कमरे में गए, और कमरे में गए वो सारी अव्यक्त मूल्यों खोली और रखी, और फिर हमको लगा कि ये जो भाषा है ये हिंदी है ये हमको नहीं समझ आती है, कोई मिले जो हमको ये समझाए, कोई मिले जो ये बताए ये क्या है, कौन समझाएगा हमको। तो जैसे बताया सुशील भाई ने, यहाँ सुबह क्लास होती थी, हम यहाँ आके बैठते थे, चुपचाप बैठते थे और चले जाते थे। बात करने की इच्छा नहीं होती थी हमसे, क्योंकि ऐसा लगता था कि हम क्या बात करें, क्योंकि हमको तो कुछ भी नहीं आता है। परंतु वैराग ऐसा ज्यादा था कि यहां का हमको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं चाहिए। विरक्त थी चेतना, हमको हंसने की भी इच्छा नहीं होती थी, किसी को देखने की इच्छा नहीं होती थी। तो हम लगभग 1.5 साल यहाँ थे और फिर यहाँ से गए। वो जाना भी बहुत मुश्किल था और लगभग 5 साल 4 साल कुछ महीने 6 महीने जैसे कल बताया बाहर थे, और वो जो बाहर का समय था बहुत मुश्किल वाला समय था। और जब जब यहाँ आते थे, सुशील भाई से मिलते थे, बाकी लोगों से मिलते थे, बहुत खुशी होती थी, बहुत बहुत खुशी होती थी। वो ट्रेन में जब बैठ के आते थे तो इतनी खुशी होती थी कि मधुबन आ रहा है, और वो जो गीत था बजता था कितना सुंदर कितना प्यारा। और जब लास्ट में 2010 में 10-10-10 को वापस आ गए, तब तो ऐसा था कि क्या करूं और क्या नहीं। और जब पूरे बाहर थे मधुबन के, ऐसा एक दिन नहीं था कि हमने कोई गीत नहीं लिखा, कोई कविता नहीं लिखी कि हे मधुबन मैं कब आऊंगा कब आऊंगा। निर्वीर भाई साहब से मिले थे, उन्होंने कहा था कि वहां बैठकर ये सोचो कि यहां आके तुम्हें क्या करना है। तो हमने वहीं बैठे बैठे सोचा था कि हमें करना क्या है। वो पूरा विश्व दिखता था आंखों के सामने, कैसे मैं इनको वो दूध जो मैंने पाया है। फिर यहां आए 2010 2015 2011 2012 2013 चुप ही रहे। छोटे लाल भाई जी थे, वो कहते थे क्लास कराओ, तो हमको इतना डर लगता था ये क्लास वगैरह से, बहुत ज्यादा डर। हमने उनको कई महीने तक टालते रहे, फिर भी वो कहते थे आज करा लो। हम उनको कहते थे पेट में दर्द है थोड़ा कि आज नहीं करा सकते वैसे वैसे वैसे। और फिर छोटे लाल भाई एक बार चले गए थे कहीं, तो उनकी जगह फिर लोकम बाबाराम भाई थे, तो बाबाराम भाई ने पकड़ लिया एक दिन। तो एक डॉक्टर बहन आई थी ओपीडी में, तो उन्होंने उस बाबाराम भाई जी को कहा कि इनको बोलो एक बार। तो बाबाराम भाई जी मिल गए, तो उन्होंने कहा आज संडे है तो आप कुछ कराओ। तो हमने कहा नहीं नहीं आज हम थोड़ा सा बिजी है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कराओ बहुत हो गया। तो हमने कहा ठीक है देखते हैं। तो फिर वो फंस गए एकदम। और फिर वो फर्स्ट संडे था, आई थिंक तारीख अप्रैल 13 अप्रैल 2013। तो भी इतना, तो हमने कहा आप करना क्या है, क्योंकि कभी बोला नहीं था। तो फिर हम बाबा के कमरे में बैठे और फिर बाबा से कहा आप क्या करूं मैं, कौन सा बहाना बनाओ क्योंकि पेट दर्द सब हो गए, इनका भी कौन सा नया बनाओ। और वो टाइम हो गया ऑलरेडी 5, क्योंकि 5 बजे अभी से बोल दूंगा ताकि वो दूसरों को बोल सके, ताकि मैं छूट जाऊं तो फिर जैसे उस बाबा के कमरे में इतना पावरफुल जैसे ये हुआ। और उस बीच में एक बार ऐसा हुआ था कि मोहिनी बहन मुंबई में थी, तो उनको लेकर हम आ गए थे 2010 में एम्बुलेंस से और फ्लाइट से। तो बाबा ने बीच में बुलाकर कहा था कि डबल डॉक्टर हो तो डबल सेवा करनी है। तो वो भी ऐसा लगा कि जैसे और भी बाबा ने कुछ, एक बार दादी जानकी से मिले थे 2011 में, माइक हट गया था और बाबा ने दादी के बारे में पूछा हमसे। फिर हमने बाबा दादी को दादी के बारे में बताया, और बताना जब पूरा हो गया तो माइक हटा दिया गया और फिर दादी भी चली गई और फिर हम थे और बाबा थे, तो वो कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। और ये बात शायद हमने आज तक कभी बताई, ये कहीं पर भी नहीं है। और बाबा कुछ और बोल रहे थे, पूछ रहे थे दादी, तो हमने कहा दादी अभी ठीक है, दादी की तबीयत, और माइक हट गया, दादी भी बैठ गई, वो भाई भी चला गया और बाबा ऐसे इधर उधर देख रहे थे। और एक छोटा सा वाक्य था, बाबा ने नीचे देखा और फिर ऊपर देखा और कहा बस ब्राह्मणों को जगाओ। इतना ही था, बस ब्राह्मणों को जगाओ। और वो कह दिया और हम एकदम से, और फिर वो भाई आ गए सब, आ गए सब, आ गए एकदम, और इतनी भीड़ हो गई वहां पर और हट गया, फिर मना हम भी दूर हो गए। तो हम जब बैठे इधर बाबा के कमरे में, तो ऐसा हुआ कि हम क्या करें। तो वो बाबा की आवाज थी या हमारा ही अपना ही चिंतन होगा शायद, या क्या था पता नहीं, परंतु वो आवाज ने हमसे कहा कि जब तुम बोलोगे तो मेरी आवाज तुम्हारी आवाज के साथ जुड़ जाएगी, इसलिए घबराओ मत। और तब से ये एक सिलसिला चालू हुआ। फिर रोज छोटे लाल भाई जी आ गए, और मुझे छोटे लाल भाई की एक बात इतनी विशेष लगती है, उनके हमने अनुभव पढ़े हैं, बुक्स में पढ़े हैं, मम्मा के साथ के, वो इतने सीनियर है हमसे, पर हमको लगता है इतने बड़े व्यक्ति हमसे कहते हैं जबकि क्लास कराओ, तो हमको ऐसे अंदर से ही होने लगता है कि मतलब ये क्या है, ये कैसा है, मतलब ये मतलब हम उनसे इतना चुप रह के दूर से उनसे सीखते हैं, वो जब भी हमसे कहते हैं, हम केवल एक शब्द में कहते हैं जी भाई जी, पर अंदर से ऐसा लगता है कि इतना बड़ा व्यक्ति हमसे ये कह रहा है, हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, कुछ बोल मतलब बोलते ही नहीं आता है, सिर्फ हाँ कह देते बस और चुप हो जाते। तो यहाँ पर जो भी है, मतलब चाहे चंद्रशेखर भाई, जो भी जितने भी भाइयों से हम मिले यहाँ पर, वो जब भी हम आए, सुशील भाई से ही जब भी हम मिलते थे, वो 2 मिनट की मुलाकात होती थी बस, पर वो इतनी खुशी वाली मुलाकात होती थी, 2003 की जब भी, वो एक अलग ही मुलाकात होती थी। वो हमको इतने सारे सामान दे जाते थे 1 मिनट में कि तू आप फरिश्ते हो, आप चल रहे हो, अरे वाह फरिश्ते से मुलाकात हो गई, अरे वाह पता नहीं क्या हो गया आज फरिश्ते मिल गए, मतलब ऐसे बोल देते थे कुछ, तो एकदम ऐसा पूरा छक्का लगा देते थे तो इतनी खुशी होती थी। तो जब भी आते थे यहाँ पर, वो नीचे मंगेश भाई थे, उनके कमरे में मिलते थे, कभी कमरा बेड दोनों बेड ऑक्यूपाई होते थे, हम नीचे सो जाते थे, हमको नीचे सोने में बहुत अच्छा लगता था। तो कभी मंगेश भाई होते थे, तो एक बार एक ट्रांसपोर्ट के भाई आ गए, तो उनका कुर्ता लटका था, हमको लगा हमारा है, हम उनका पहन ली और चले गए, हमको क्या पता। तो वो आके ढूंढ रहा है अपना कुर्ता, फिर किसी ने पाया तुमने किसका कुर्ता पहन लिया तो हमको लगा अरे बाप रे ये क्या कर दिया। फिर शॉल थी हमारे पास, तो एक ही शॉल चला रहे थे 2-3 महीनों, कितने साल, 1 साल से, क्योंकि हम थोड़ा मतलब थोड़ा उस हालत में थे क्या कहेंगे उसको, संपन्न, ये ऐसे कपड़े और ये सब चीजें हमारे पास नहीं रहती थी, तो वो हॉल हमारी शॉल थी, तो हमने धोई नहीं थी कितने महीनों से, वैसी थी वो। तो वो भाई आया ऐसे से करने लगा बोले सीधा हम नीचे गिर गए परम धाम से तुम्हारी शॉल को ये करके, तो हमको बहुत बुरा लगा, अरे शॉल खरीदनी चाहिए। फिर हम सोचते थे कोई तो आके सौगात दे दे, कोई शॉल दे देगा कोई, पर कभी नहीं दिया तब फिर थोड़े से फिर हम वापस गए, और फिर उधर संघर्षमय जीवन रहा पूरा, हर चीज में संघर्ष था, हर चीज में संघर्ष, छोटी छोटी बातों में संघर्ष, वो कपड़े धोना और वो सब कुछ, मतलब लोगों के साथ रहना, तो वो एक बहुत थी, पर एक ही लगन थी, इतनी प्यास थी, ऐसी प्यास थी कि क्या करूं और क्या नहीं। जब यहाँ आऊं तो मुझे कुछ तो यहां मैं लेके आऊंगा, मतलब एक जैसे तूफान हूं ऐसा लगता था। और यहां से जब गया तो मैं नहीं जा रहा हूं, जब यहां से गए थे मधुबन से बाहर जब जा रहे थे, ट्रेन में बैठे थे, तो ऐसा लग रहा था कि मैं यज्ञ हूं, जो मेरी सेवा करेगा वो मेरी सेवा नहीं करेगा वो यज्ञ की सेवा करेगा, जो मेरे मार्ग में अति विघ्न बनेगा वो मेरे मार्ग का विघ्न नहीं होगा, वो यज्ञ का विघ्न होगा। तो उसी संकल्प से गए कि मैं यज्ञ हूं, और जब आए वापस तो ऐसे आए थे कि मैं तूफान हूं, ऐसे बम हूं जैसे गिरूंगा, और वो गिरने को बहुत टाइम लगा पर गिरूंगा जरूर, पर ऐसे विचार, ऐसे संकल्प, ऐसी किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, जो प्यार मेरे अंदर है, जब तक इस संसार की एक एक आत्मा में ऐसा जड़ा नहीं गाड़ दूंगा, रुकूंगा नहीं। तो ये सारे संकल्प थे, ये आज का अचानक का पाठ हो गया ओम शांति।
ओम शांति। भाई जी अभी सुना रहे थे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव, तो मुझे भी एक छोटा सा अनुभव 2 मिनट का ही सिर्फ याद आया। जब ये प्राणिक शक्ति की क्रांति चल रही थी, तो उस समय इन्होंने बताया कि आप अगर ये संकल्प करके जाओ कि मेरे अंदर सारी विश्व की प्राण ऊर्जा आ गई है, तो आप थकेंगे नहीं,
तो हमने इसका प्रैक्टिकल अनुभव किया। मैं एक क्लास पूरा होने के बाद और मैं अधर देवी तक यहां से बिना रुके दौड़ के जाता था, 3 मिनट में बिना दौड़े मना दौड़ के जाता था बिना रुके हुए, और मुझे ऐसा फील नहीं होता था कि मैं थक गया हूं। जैसे कि एक ऐसी एनर्जी आ जाती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और पावर बढ़ती जाती थी, रोड़ता जाता था। तो उस दिन से हमने ये फील किया कि फिर इनको बताया ये अनुभव, तो कहने लगे कि ये सब विचारों का खेल है। तो हमने अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू किया उस दिन से, तो इतनी एनर्जी फील होती है जैसे कि पॉजिटिव पावरफुल संकल्प करके चलो किसी भी कार्य में, तो आपको निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती रहेगी। ये विशेष कुछ अनुभव था।
सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, सोने के फूलों की हो तुम पे बारिश, सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, सोने के फूलों की हो तुम पे बारिश, दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा, दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा।